आज हमारे बीच आदरणीय शीलू दीदी जी, सभी भली भांति परिचित हैं क्योंकि बहुत समय से आ रहे हैं बाबा के यज्ञ में, परंतु जो नए भाई बहन आ रहे हैं उनको एक संक्षिप्त सा परिचय देंगे। आदरणीय शीलू दीदी जी ज्ञान की वो देवी हैं जिन्हें बाबा ने स्वयं माँ सरस्वती का वरदान देकर इस भूमि पर बिठाया था। आज के टॉपिक के अनुसार बेहद की वैराग्य वृत्ति, आप मुंबई में जन्मी और इतनी सीधे साधारण सादी वेशभूषा में आप मधुबन में आ गई, ये भी एक उस जमाने की बहुत विशेषता रही होगी। दीदी की बहुत बड़ी विशेषता है, आप मीठी वाणी की धनी हैं और 1948 में आपका जन्म मुंबई में हुआ था और वहीं आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और 1969 में आपने अपना जीवन इन सेवाओं में समर्पित कर दिया। बाल्यकाल में ही ज्ञान मिला था और बहुत जल्दी ये सब समझने के बाद, अनुभव करने के बाद आप इस आध्यात्मिकता में लग गए। 1970 से ही आपने देश के विभिन्न भागों में बहुत सारे सेवा केंद्र भी खोले और जगह जगह पर जाकर सेवाएं प्रदान की, परंतु 1976 से आप मधुबन महायज्ञ में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दीदी जी के लिए दो शब्द हम कहेंगे, मधुबन की आप शान है, मधुबन की आप शान है, दीदी आप बड़ी महान है, दिव्य गुणों की आप खान है, ब्राह्मण परिवार की एक पहचान है। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन में एजुकेशन विंग है तो उनकी आप उपाध्यक्ष हैं। सब सर्वप्रथम ये राजयोग शिविर आदि जब शुरू हुए थे तो मधुबन से राजयोग शिविर करवाने आपने आरंभ किए थे और टीवी चैनल्स में भी, उस जमाने में हम सुनते हैं जी टीवी पर एक प्रोग्राम आना शुरू हुआ था, तो प्रथम रिकॉर्डिंग्स दीदी जी से ही आरंभ हुई थी। तो इस प्रकार बाबा की सेवाएं बेहद में जानी आरंभ हुई थी तो उनमें आप एक विशेष रतन रहे हैं। तो अभी हम आज के वरदान के अनुसार ही, बाबा ने कहा था बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले कौन है, अचल अडोल भव। तो आज दीदी वो अचल अडोल बनने की विशेष प्रेरणाएं हमें देंगे, आदरणीय शीलू दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, माताएं ओम शांति। बहुत सुंदर बाबा का वरदान आज का था, बेहद की वैराग्य वृत्ति से कैसे हम अपनी स्थिति को अचल अडोल बना सकते हैं। वृत्ति से वाइब्रेशंस, वो तो अभी आपने सुना, लेकिन ये बेहद की वैराग्य वृत्ति कैसे आए, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है, वो अभी हम सुनेंगे। क्योंकि समय अनुसार अभी जो समय चल रहा है, इस समय सचमुच हम सब में वो बेहद की वैराग्य वृत्ति आनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। कई समझते हैं कि जब समय आएगा तब अपने आप ये वैराग्य वृत्ति आ जाएगी, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं समय का इंतजार मत करो, पर समय से पहले इंतजाम करो। समय आपकी रचना है, आप समय के लिए इंतजार नहीं करो। आप बेहद की वृत्ति लाओ तो समय अपने आप आ जाएगा। समय तो इंतजार कर रहा है, वो तो आपकी रचना है। आपकी जैसी स्थिति होगी उस अनुसार समय अपना काम करेगा। और वैसे भी बाबा कहते हैं सब तो तैयार हैं, सिर्फ देरी आप बच्चों की है। प्रकृति भी तैयार है, वैज्ञानिक भी तैयार है, राजनेताएं भी तैयार है, एडवांस पार्टी भी तैयार है, सब तैयार है। परिवर्तन लाने में इन सब का योगदान होगा, लेकिन कमी किस बात की है? किस बात की कमी है? हाँ, हमारी। तो हमारी कमी है, हमारे अंदर की कमी है, जो उन सब को अपना कार्य करने नहीं दे रही है। तो जबकि हमारे अंदर कमी है, तो हमें भी अपने आप को बदलना होगा। अब तक जो कुछ चल रहा था वैसे ही अब नहीं चलेगा। एक मार तो सबने झेल ली। कौन सी मार सबने झेल ली? हाँ, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, ये एक मार तो झेल ली। फिर दूसरी मार कौन सी झेलनी पड़ेगी? पेट्रोल ही नहीं मिलेगा। ऐसे भी होगा ना, क्योंकि पेट्रोल का जहाँ उत्पादन है, क्रूड ऑयल, उसी पर ही बम मार रहे हैं। तो वो फिर दूसरी मार झेलनी पड़ेगी। धीरे धीरे ये सब कमी महसूस होती जाएगी। फिर बाबा कहते हैं खाने को अन्न नहीं मिलेगा। अभी तो चलो फिर भी मिल रहा है, सब्जियां मिल रही है। अभी भी देखो राजस्थान में बिन मौसम बारिश हुई, ओले पड़े कितनी जगह, और कितनी तैयार फसल सब नष्ट हो गई। बताओ, तैयार फसल नष्ट हो गई तो बताइए क्या परिणाम होगा उसका? फिर हो सकता है खाने को भी ना मिले। लेकिन बाबा ये भी आश्वासन हमें देते हैं, और सब कुछ ना भी मिलेगा लेकिन दाल रोटी तो मिलेगी, है ना? दाल रोटी क्यों मिलेगी? क्योंकि रोटी माना आटा। तो गेहूं तो घर में रख सकते हैं, एक साल का भी स्टॉक रख सकते हैं, दाल भी एक साल का स्टॉक रख सकते हैं, तो वो तो खा सकेंगे वो जो स्टॉक रखा है। पर सब्जियां तो नहीं रख सकते हैं, फल तो नहीं रख सकते हैं, वो तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए और सब चीज़ें ना भी मिले, केवल दाल रोटी मिले, यही बहुत है। और हमारे ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है? हाँ, दाल रोटी खाना और प्रभु का गुण गाना। न देख पराई चौपरी, न तरसा अपना जी। दूसरे को मत देखो, अपने आप में तरसो नहीं कि इनको मिला मुझे नहीं मिला, इनके लिए है मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अंत में यही सब कुछ होगा। परंतु वो स्थिति हमारी उस प्रकार से न बने जो हमें तरसना पड़े। तो बाबा कहते हैं पहले से ही बेहद की वैराग्य वृत्ति ले आओ। किसी ने कहा, जब बाबा ने कहा ना अंत में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उसने अभी से पुरुषार्थ करना शुरू किया। 3 टाइम खाते थे तो 1 टाइम खाना शुरू कर दिया, बस अब और खा अभी नहीं लेना है। और तो अपने अंदर उस प्रकार से वैराग्य वृत्ति लाई। लेकिन बाबा हमें हट रूप में चलना है, वो वैराग्य वृत्ति नहीं लाते। क्योंकि बाबा ये भी कहते हैं बच्चे कुछ भी छोड़ना नहीं है, लेकिन किस प्रकार से बेहद की वैराग्य वृत्ति हुई होगी, वो है किसी में भी फंसना नहीं है। मुझे तो यही सब्जी चाहिए, मुझे तो यही दाल चाहिए, मुझे तो यही टोली चाहिए, यही चाहिए, मुझे तो पानी पूरी चाहिए, हाँ मुझे तो ये चाहिए। ये जो जीव की जो आसक्ति है वो नहीं रखनी है। बाबा जो खिलावे जो पहनावे वही पहनना है खाना है। हाँ यही कप बस सबको ऐसे ही साड़ी चाहिए ऐसे ही कपड़ा चाहिए, नहीं जो बाबा देवे। तो बेहद की वृत्ति कैसे आएगी, जब हम पहला कदम उसके लिए है देही अभिमानी बनना, जो आज भी बाबा ने कहा। क्योंकि इच्छाएं आसक्ति चाहिए ये सब का कारण ही देह अभिमान है। इसलिए बाबा हम बच्चों को सबसे पहले पहला लेसन यही है कि अपने को आत्मा समझो। तब आत्मा को न अच्छा कपड़ा चाहिए, न अच्छा खाना चाहिए, हाँ अच्छा ये चाहिए, अच्छा वो चाहिए, वो सब शरीर को चाहिए। आत्मा तो ज्योति है, उस ज्योति को क्या चाहिए, ये खाना पीना रोटी कपड़ा मकान, ये तो शरीर की आवश्यकता है। तो परंतु बाबा ये भी कहते हैं अगर आत्मा के कर्म श्रेष्ठ है तो प्रकृति अपने आप दासी बन जाएगी, वो सब कुछ देगी, सब कुछ देगी। अभी भी हमारी कई विदेश के भाई बहने जो आए थे ना, वो बता रहे थे हाँ उनका प्लेन लास्ट में चला और उसके बाद सब प्लेन कैंसिल हो गए, वो पहुंच गए और बाकी सब रह गए, उनका प्लेन चला। कई ऐसे अपना अनुभव सुना रहे थे। तो इसीलिए ये सब हिसाब किताब अंत में चुकतू होने हैं। परंतु हमें क्या करना है, हमें अपना श्रेष्ठ कर्म करके अपने पुण्य की पूंजी जमा करनी है, क्योंकि वही काम आएगा, बाकी तो कुछ भी काम नहीं आएगा। तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति क्यों जरूरी है, कई इस बेहद की वैराग्य वृत्ति को न समझ करके हद की वैराग्य वृत्ति लाते हैं। हद की वैराग्य वृत्ति क्या होती है, बस कई होते थे मुझे तो इस संसार में जीना नहीं है, मुझे तो मरना है, मुझे तो मरना है, मुझे मरना है, बस सारा दिन यही रट लगा के रखते हैं, मुझे तो मरना है। एक अभी प्रसंग आया है इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु, एक व्यक्ति की इच्छा मृत्यु, बहुत सालों से वो कोमा में पड़ा था। तो आखिर सोचा कि अभी तो हम जीवित नहीं रह सकेंगे तो इच्छा मृत्यु हो। वैसे भारत में ये कानून नहीं है कि मुझे मरना है तो हमको डॉक्टर कोई जहर की इंजेक्शन दे दे और मार डाले, उसको हत्या कहा जाएगा। लेकिन अभी ये पहला किस्सा था जो उसको था कि ये मेरी मृत्यु हो और मेरी मृत्यु हो और उसको जहर का इंजेक्शन देना पड़ा, क्योंकि बहुत सालों से कोमा में पड़ा था। तो कहने का भाव है कि हद का वैराग्य अलग चीज़ है। बाबा हमको हद का वैराग्य भी सिखाते हैं, हाँ मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है, ये नहीं क्या, क्योंकि कई कई ऐसे लोग हैं जिनको हद का वैराग्य है, संबंधों से परेशान है, अपने शरीर से परेशान है, बीमारी से परेशान है, धन की परेशानी है। तो ये जो संसार की परेशानियां हैं, उन परेशानियों के कारण यही सोचते हैं बस हमको तो मरना है, या तो फिर सन्यासी बन करके चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको सन्यासी भी नहीं बनना है, घर बार का सन्यास तो करना ही नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों का भी सन्यास नहीं करना है, जो रचना रची है उसकी पालना भी करनी है, घर गृहस्थ में भी रहना है, लेकिन कमल फूल समान रहना है, छोड़ना भी कुछ नहीं है। लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या है, फंसना भी कहीं नहीं है, फंसना भी कहीं नहीं है और नया भी कुछ जोड़ना नहीं है, नया भी कुछ जोड़ना नहीं है, मैं और 10 दुकान खोलूं, मैं और 10 ये करूं, मैं वो करूं, वो करूं, इतना धन कमाऊं, इतना नाम कमाऊं, मान कमाऊं, यश कमाऊं, महिमा कमाऊं, मैं, वो देह अभिमान की जो मैं है ना, उसमें जो मनुष्य फंस जाते हैं, बाबा कहते हैं वो उससे वैराग्य चाहिए। बेहद का वैराग्य माना देखते हुए नहीं देखना, बेहद का वैराग्य माना साक्षी दृष्टा होकर रहना, बेहद का वैराग्य माना जो भी परिस्थिति आए उसमें अचल अडोल रहना। हलचल भी तब होती है जब हम उसमें फंसते हैं, हलचल होना माना जरूर फंसे हुए हैं, क्योंकि मेरा समझते हैं, दूसरे किसी का होगा तो हमें हलचल नहीं होगी, पर मेरा जब शब्द आता है तो हलचल शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरा कहने से मोह भी आएगा, मेरा कहने से लोभ भी आएगा, मेरा कहने से अभिमान भी आएगा, मेरा कहने से क्रोध भी आएगा, ये सारे विकार आते हैं। इसीलिए बाबा ने इसकी जड़ को खत्म करने लिए क्या कहा, ये मैं और मेरा, इसको खत्म करो। मैं कहने की आदत पड़ी हुई है ना, आदत है ना, मैं ऐसा, मैं। किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि हम जब टेलीफोन करते हैं तो किसी से बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा उच्चारण जो शब्द होता है वो मैं होता है, मैं। कई समझते हलो 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 फोन्स, अब बात कर रहे हैं किसको, सुनाई दे रहा है नहीं तो हलो हलो, ये सबसे ज़्यादा बोला जाता है, परंतु नहीं, हलो हलो नहीं, कई बार तो वो सुन भी नहीं रहा, परंतु मैं करते रहते हैं, मेरा करते रहते हैं। तो ये शब्द कितनी बार हमारे मुख से निकलता है देह अभिमान के वश। तो इसीलिए बाबा ने दो बातें कही है, जब भी कहो मैं, उस समय साथ में क्या जोड़ो, मैं आत्मा। जब भी मेरा शब्द कहो तो उसके साथ क्या जोड़ो, मेरा बाबा। क्योंकि अभी भी गीत सुना ना, बाबा मिला माना सब कुछ मिला, और कुछ नहीं चाहिए, बाबा में सब कुछ है, सब संबंध उनमें है, पदार्थ उनमें है, सब व्यक्ति उनमें है, सब सुख उसमें है। तो बाबा मिला माना सब कुछ मिला, धरती आकाश सब कुछ मिला। हाँ, एक कहानी सुनाते ना कि एक राजा था, उस राजा ने, उसके पास बहुत सामान था, बहुत सौगाते थी, बहुत कुछ था। तो उसने सोचा कि ये जो इतनी सारी चीज़ें मेरे पास है, मैं अपनी जनता को, अपनी प्रजा को थोड़ा बांटूं। तो उसने सारा कुछ रख दिया और प्रजा का आह्वान किया, उनको बुलाया कि आपको जो कुछ चाहिए सब ले लो, सब, हाँ, जो चाहिए उस चीज़ पर हाथ रखो, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। बहुत चीज़ें थी, पूरा महल भर दिया जो चीज़ें देखी। तो बहुत प्रजा आ गई, बहुत प्रजा आ गई, कई सुंदर सुंदर चीज़ें थी, हर एक को अपनी अपनी पसंदगी की चीज़ जो जिस पर हाथ रख दिया उसको मिल गई, बड़ा खुश हो के चला गया। लेकिन एक छोटी बच्ची आई, वो भी आई, राजा ने उसको कहा कि तुमको जो चाहिए इसमें से हाथ रखो, आपको मिल जाएगा। लेकिन उसने कुछ भी नहीं लिया, वो घूमती रही घूमती रही घूमती रही, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा घूमती रही, लेकिन कोई भी चीज़ पर हाथ नहीं रखा। तो राजा को कहा गया, राजन ये तो कुछ भी हाथ नहीं रख रही है, खाली घूम ही रही है, इसको पता ही नहीं क्या चाहिए, क्या चाहिए, कैसे पता चले, घूम ही रही है। तो राजा उसके पास गया और कहा कि आपको क्या चाहिए बच्ची, आप जिस भी चीज़ पर हाथ रखो आपको मिल जाएगा। तो उसने क्या किया, हाँ, कोई चीज़ पर हाथ नहीं रखा, वो राजा को ही पकड़ लिया, हाँ, राजा को ही पकड़ लिया। तो राजा ही उसका हो गया। तो राजा हो गया इसका मतलब जो भी राजा का था वो सब उसका हो गया, है ना, क्योंकि राजा ही उसका हो गया। तो देखो, वो एक चीज़ के बदले उसने राजा को पकड़ लिया, तो मानो उसकी जो भी चीज़ है वो सब उसकी हो गई। तो देखो ये कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाबा ही मेरा संसार है जब हम ये कहते हैं, तो फिर और कहीं चीज़, किसी भी चीज़ में आसक्ति क्यों जाएगी, क्योंकि बाबा हमें सब कुछ देता है, सच कुछ हमने देखा है। इसीलिए केवल सतयुगी देवी देवताएं ही इच्छा मात्रम अविद्या नहीं है, ब्राह्मण बच्चे भी इस संगम युग पर इच्छा मात्रम अविद्या है। इसके ऊपर एक और मिसाल दिया जाता है कि बड़े बड़े फिलोसोफर्स दुनिया में होकर गए हैं, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब बड़े बड़े दर्शन शास्त्री होकर गए हैं संसार में, जिन्होंने बहुत ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान की उनकी पुस्तकें हैं। तो उनकी एक कहानी आती है सोक्रेटिस की, सुकरात की कहानी आती है कि वो रोज़ क्या करता था, दुकानों का चक्कर लगाता था, बाहर दुकानों के बाहर वो जो उनका शोकेस होता है उसमें तो कई वैरायटी सुंदर सुंदर चीज़ें रखी रहती थी। तो रोज़ जाता था और वो चीज़ें देखता जाता था, हर दुकान के ऊपर के वो शोकेस पे चक्र लगाता जाता था, देखता जाता था, लेकिन कभी कुछ खरीदता नहीं था, कुछ भी खरीदता नहीं था। तो एक दुकानदार इसको रोज़ देखता था कि ये रोज़ आता है, इतना समय अपना देता है, एक एक दुकान का वो शोकेस जो है उस पर निरीक्षण करता है, लेकिन कुछ खरीदता नहीं है। तो अभी जब कल आएगा मैं उनसे पूछूंगा क्यों नहीं खरीदते हो। तो जब अगले दिन आया और उसको अंदर बुलाया तो दुकानदार ने पूछा, आप रोज़ आते हो, ये सब देखते हो, लेकिन खरीदते क्यों नहीं हो, आपके पास क्या पैसा नहीं है, आपकी इच्छा हो और पैसा नहीं है तो इसीलिए होता है ना, कैसे खरीदे। कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आपको जो चाहिए ले जाओ। लेकिन सुकरात ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अगर कुछ नहीं चाहिए तो फिर क्यों रोड़ चक्कर लगाते हो, हाँ, टाइम वेस्ट क्यों करते हो, खरीदना भी कुछ नहीं है। तो उसने बड़ी अच्छी बात सुनाई। उसने कहा कि मैं इन चीज़ों को देखता हूँ और मैं अपनी परीक्षा लेता हूँ। क्या परीक्षा लेता हूँ? क्या इस चीज़ के बिना मैं चल सकता हूँ? तो अंदर से आता है, हाँ चल सकता हूँ, ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ के बिना चल सकता हूँ, हाँ चल सकता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही मैं रोज़ अपनी परीक्षा लेने के लिए आता हूँ कि मैं इसके बिना चल सकता हूँ। तो देखो बेहद की वैराग्य वृत्ति आ गई।
अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है।
ब्रह्मा से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है।
कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है।
शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है।
शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है।
परंतु बेहद की वैराग्य वृत्ति का ये भी मतलब नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना। हद की वैराग्य वृत्ति में सब छोड़ देना हो सकता है, पर बेहद की वैराग्य वृत्ति का मतलब है जो है उसको सफल करना। ये अंतर है। जो हद के वैरागी होते हैं ना, सन्यासी बन जाते हैं, वो समझते हैं ये छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना समझते हैं? क्योंकि समझते हैं ये माया है। कहेंगे धन भी माया है, स्त्री भी माया है, बाल बच्चे भी माया है, ये दुनिया सब माया है। ये माया समझ करके छोड़ देते हैं। पर बाबा कहते हैं वो माया नहीं है, स्त्री माया नहीं है, लेकिन स्त्री के पीछे जो काम वासना है वो माया है। जो स्त्री के प्रति उनकी देह का आकर्षण है वो माया है, उस माया को छोड़ना है। बाकी स्त्री तो शक्ति है, स्त्री तो देवी है, स्त्री तो स्वर्ग का द्वार है, लेकिन जो समझते वो माया है, फिर वो कहेंगे वो नरक का द्वार है। अब स्त्री नरक का द्वार है तो पुरुष तो सबसे बड़ा नरक का द्वार है, अगर स्त्री नरक का द्वार है तो। इसीलिए नरक का द्वार कोई नहीं है, हम सब स्वर्ग के ही द्वार हैं, लेकिन अंतर है कि दृष्टि बदलनी है। फिर कोई कहे कि बच्चे माया है, इसलिए बच्चे बच्चे ये सब इनका त्याग। बाबा कहते नहीं, बच्चे तो फूल है, कितने प्यारे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं, बड़े इनोसेंट होते हैं। यहाँ तक कि बाबा कहते बच्चे तो महात्मा से भी ऊँचे हैं, महात्मा को तो फिर भी विकारों का ज्ञान है, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए बच्चे माया है ये नहीं है, लेकिन हाँ जो उनके प्रति मोह है वो ज़रूर माया है। और जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो बच्चों से इतना प्यार नहीं करेंगे, लेकिन पोते दोते पोतरियाँ दोतरियाँ वो बहुत प्यारे लगते हैं। बच्चों से ज़्यादा पोते दोते प्यारे लगते हैं। क्यों क्यों वो प्यारे लगते हैं? क्योंकि वो ब्याज है। जैसे ब्याज होता है ना, बैंक में आपने कोई पैसा रखा तो पैसा जितना है वो तो आपका है ही है, लेकिन हर 6 महीने में ब्याज बनता है। तो हर 6 महीने में आप देखेंगे मेरा ब्याज कितना आया, पैसा कितना है वो बाद में, लेकिन ब्याज कितना मिला। तो जो पोतरे पोतरियाँ हैं वो क्या है, इंटरेस्ट, हाँ ब्याज के रूप में है, तो इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा मोह पड़ जाता है। तो वो माया नहीं है, परंतु उनके प्रति जो मोह है हाँ वो माया ज़रूर है। फिर कोई कहे धन माया है, धन भी माया है, क्योंकि धन है तो पाप होता है, लेकिन बाबा कहते धन तो देवताओं के पास भी था, श्री लक्ष्मी तो स्वयं धन की देवी है, ये थोड़ी कहेंगे उनके पास माया है। लेकिन धन माया नहीं है, पर धन के प्रति जो लोभ है वो माया ज़रूर है, चाहिए चाहिए चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं संतुष्टता सबसे ऊंचा गुण है, संतुष्टता वो सारे गुणों का ताज है। किसी ने बहुत श्रृंगार कर लिया हो लेकिन ताज न पड़ा हो तो वो पूरा श्रृंगारा हुआ नहीं लगता है, है ना? पूरा श्रृंगारा तब लगेगा जब उसके सिर पर ताज भी हो, और वो ताज है संतुष्टता का। इसीलिए ये माया नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा तुम सन्यासी नहीं हो लेकिन तुम राज ऋषि हो। ये राज ऋषि शब्द में बहुत कुछ समाया हुआ है, राजा बनने लिए ऋषि हो। राजा तो अभी स्वराज्य अधिकारी, अभी भी राजा, भविष्य में भी राजा। अभी स्वराज्य अधिकारी, फिर भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। लेकिन अभी स्वराज्य अधिकारी माना किस रूप में राजा है? अपने इंद्रियों के राजा, अपने मन के राजा, सबके दिलों के राजा, सबका दिल जीतना, ये बहुत बड़ा राजा का काम होता है। अपनी प्रजा का पूरा दिल जीतना, ऐसे नहीं केवल राज्य करना, अंकुश लगाना, कंट्रोल करना, उनका दिल जीतना। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं सबको जीतो, सबका दिल जीतो, हमको किसी को हराना नहीं है, है ना? दुनिया में तो कंपटीशन होती है, इसको मैं हरा करके आगे जाऊं, इसको नीचे गिरा करके आगे जाऊं। वो कंपटीशन में दूसरे को हराना और खुद को जिताना ये चलता रहता है। और बाबा हमें क्या कहते हैं, किसी को हरा करके ऊपर नहीं जाना है, आप अपनी तरह से अपना पुरुषार्थ करो, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना अपना भाग्य है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। किसको हरा करके आपका भाग्य उसका छीन नहीं सकते हो। इसीलिए किसी को गिराने का संकल्प कभी नहीं करना, किसी से छल कपट करने का संकल्प कभी ना आए, क्योंकि ये सब कर्मों का हिसाब किताब बन जाता है। अभी किसी से छल कपट किया, अगले जन्म में वो आत्मा आपका सारा हिसाब किताब चुकतो कर लेगी, सब कुछ छीन लेगी। इस कल जन्म में आपने छीना, इसीलिए बाबा कहते हैं दाता बनो, पुण्य कमाओ। दाता बन करके पुण्य कमाएंगे तब दुआएं मिलेगी, और अंत में दुआएं ही काम आएगी। अगर आपके पास एक ही रोटी है और कोई भूखा आ जाए, आधी रोटी उसे दो, आपकी नहीं ऐसे भूखे नहीं रहेंगे, आपको किसी न किसी रूप से मिल जाएगा, क्योंकि देने से आपका बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बढ़ेगा। इसीलिए बाबा हमको बेहद की वैराग्य वृत्ति कहते हैं। पर जितनी बेहद की अंदर में वैराग्य वृत्ति हो, उतनी ही खुशी हो। खुशी से वैराग्य वृत्ति, रंज होकर के, नाराज होकर के, दुखी होकर के वैराग्य वृत्ति नहीं, क्योंकि देने में लेना है तो वो खुशी तो आपकी तो 100 गुना और बढ़ जानी चाहिए। खुशी जैसी खुराक अगर आप खाते रहेंगे तो पेट तो सचमुच भरा ही रहेगा। और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है, तो बाबा कहते सब कुछ होते हुए भी खुशी न होने के कारण आप अपने आप को खाली समझेंगे। और खुशी तब रहेगी जब अंदर में ये महसूस करेंगे बाबा मिला, सब कुछ मिला। बस इसीलिए किसी की तरफ भी बुद्धि नहीं जाएगी, कहीं आकर्षण नहीं होगा, कहीं पर भी फंसेंगे नहीं। ये बहुत बड़ी 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 शिक्षा है जो बाबा हम बच्चों को देते हैं। और जो है सफल करो, कभी भी शरीर छूट जाए, सचमुच हम देखते हैं रोज किसी न किसी का समाचार आता है, हाँ फलाने ने शरीर छोड़ा, अरे फलाना वो तो इतना हट्टा कट्टा था, क्या हो गया उसको, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेल हो गया, बैठे बैठे मन नचित, कोई सोच भी नहीं। तो रोज ऐसे समाचार सुनने को मिलते हैं, पता नहीं हमारा नंबर कब आ जाए, पता ही नहीं। पता है क्या, किसी को पता नहीं है, किसी को भी कुछ पता नहीं है। लेकिन ये भी कहावत है, एज सर्टेन एज डेथ, सबसे जो अवश्य होने वाली चीज है वो मृत्यु है, बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन मृत्यु तो आपके हाँ हमारे लिखी हुई है, हमारे साथ सब रिटर्न जर्नी की टिकट लेकर आए हैं। ये रिटर्न टिकट भी तो लाई होंगी ना, नहीं तो फंसे रहेंगे यहाँ। रिटर्न टिकट ज़रूर लाए होंगे, तो जैसे ये रिटर्न टिकट लाए हैं, वापस जाना है जहाँ से आप आए हैं, तो वो रिटर्न टिकट भी लेकर आए हैं। ले आए हैं ना सभी, ऐसा कोई है जो नहीं लाया है, सब लाए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा तैयार रहो, सदा तैयार, हर वक्त अपने आप से पूछो कि मुझे कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पर ये कुछ नहीं चाहिए तब महसूस होगा जब अंदर में भरपूर होंगे, और अंदर में भरपूर तब होंगे जब जो है सफल करेंगे, नहीं तो अंत में वही याद आएगा, वही याद आएगा। वैराग्य वृत्ति का मतलब नहीं है शरीर को कष्ट देना, बाबा कष्ट देने लिए अपने आप को तो कभी नहीं कहते, क्योंकि बाबा जानते हैं आधा कल्प भक्ति मार्ग में हमने बहुत कष्ट सहन किया है, भक्ति के कितने कष्ट सहन किए, धक्के खाए हैं, टिप्पणी भी घिस गई, पैसा भी खत्म हुआ, सब कुछ गंवा करके अभी बैठे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस तन को कष्ट मत दो। भक्ति में तो कितना कष्ट देते हैं अपने शरीर को। बाबा कहते हैं वो भी नहीं करो, जो सहज मिले वो दूध बराबर है, वो शक्ति प्रदान करेगा। जो मांग लिया वो पानी बराबर होगा, वो केवल प्यास बुझाएगा, अल्पकाल की खुशी देगा, सदाकाल की नहीं। और जबरदस्ती किससे खींच लिया वो तो खून बराबर है, न वो आपको सुख देगा न किसी और को सुख देगा। इसीलिए तन को भी सफल करना है, जितनी सेवा इस तन से हो सके करो। ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, मामा को देखा, दादियों को देखा, अंत तक तन को सफल किया उन्होंने। एक घड़ी भी ये नहीं कि मैं विश्राम करूं, हाँ नहीं, बस बाबा दादी यही बुद्धि इसमें रखते थे, बस सेवा सेवा सेवा, इस तन से सेवा हो। इसीलिए अंत तक वो सेवा कर सके, और जब गए एकदम निरसंकल, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, बस जिसके पास से आए हैं उसी के पास जाना है, नहीं तो ये मेरा वो मेरा वो मेरा वो मेरा वही याद आएगा अंत में। तो तन की भी आसक्ति तो ना हो, लेकिन साथ साथ बाबा कहते सफल भी जरूर करो। ये आंखें भी सेवा करे, ये जीभ भी सेवा करे, ज्ञान रत्न निकाले। इन आंखों से हम वाइब्रेशंस देवे, दृष्टि देवे, बाबा की याद दिलाएं। इन हाथों से हमारा कर्म योग हो, हम चले तो ये टांगे भी बाबा की याद दिलाए, फरिश्ता की चाल हो। होता है ना कईयों की तो इतनी ऐसी फरिश्ता की चाल होती है, बाबा की जैसी देखी, दादियों की देखी, फरिश्ता की चाल। तो वो फरिश्ता की चाल माना अंदर ही अंदर वो देही अभिमानी स्थिति, और उस देही अभिमानी स्थिति से दूसरों की सेवा कर सके। तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, धन से बाबा के कार्य में सेवा करो, तो ताकि मन हमारा इन बातों के आकर्षण से परे हो जाए। तन से भी सेवा, मन से भी सेवा। जब बाबा कहते व्यर्थ संकल्प खत्म हो, इसका मतलब कि व्यर्थ संकल्प से हम जब मन में लाते हैं व्यर्थ संकल्प, तो सेवा तो होती नहीं है। मन से भी संकल्प द्वारा भी सेवा कर सके, वो मनसा सेवा तब होगी जब मनसा में कोई व्यर्थ सोच नहीं चलेगा, कभी कोई नेगेटिव संकल्प नहीं चलेगा, किसके प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, नफरत भाव, ईर्ष्या भाव, ये सब व्यर्थ के खाते में जाता है, सब विकारों के खाते में जाता है। इसीलिए सब के प्रति सम भाव, सबसे स्नेह, सब के प्रति हमारी शुभ भावना, शुभ कामना, ये तब, ये जब होगा ना, तब हम व्यर्थ से मुक्त होंगे, तब हम सफल कर सकेंगे अपने विचारों को भी, संकल्पों को भी। और धन भी बाबा कहते हैं सफल करो। तो इसीलिए माया समझ करके छोड़ने की बात नहीं है, पर सफल करने की बात है। तो ये जन्म भी हमारा सुहाला होगा, बहुत ही सुंदर बीतेगा, और भविष्य का जन्म तो सुहाला होगा ये, क्योंकि वर्तमान के आधार पर भविष्य बनता है। हाँ, कई कहते हैं बस वर्तमान में खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा, अभी झूठ छल कपट चुगली मारा मारी बेईमानी ये सब चलेगा, क्योंकि वर्तमान ही तो जीना है। लेकिन वर्तमान में ही जीना नहीं है, ये वर्तमान हमारा भूतकाल का परिणाम है और ये वर्तमान भविष्य काल बना रहा है। तो तीनों कालों को बुद्धि में रख करके कर्म करना है, ये नहीं बस मैं तो वर्तमान में जीना है। कई कहते ना वर्तमान ये प्रेजेंट है, गिफ्ट है, तो इसका खूब आनंद लो, खाओ पियो मौज करो। नहीं, अभी बचत करेंगे तो भविष्य में जमा होगा, भविष्य में मिलेगा। अभी खा पी करके खाली हो जाएंगे तो भविष्य में तो कुछ भी नहीं मिलना है। तो जब ये बुद्धि में आएगा तब हम बेहद की वैराग्य वृत्ति का अनुभव कर सकेंगे, दृष्टि को शुद्ध बना सकेंगे, सर्व आकर्षणों से परे बना सकेंगे। इस मुख से ज्ञान रत्न के सिवाय और कुछ न निकले, कुछ न निकले। अब शब्द तो क्या, लेकिन साधारण शब्द भी न निकले, क्योंकि इस मुख से वरदानी बोली निकले बस। क्योंकि वरदानी बोल कम होते हैं, व्यर्थ बोल तो बहुत होते हैं। कई जो कहते हैं ना बाबा की याद नहीं रहती, योग नहीं लगता, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सोचते हैं। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जो श्रेष्ठ विचार होते हैं ना वो थोड़े होते हैं, श्रेष्ठ विचारों की स्पीड भी थोड़ी होती है, वो तेज़ नहीं होती है। व्यर्थ विचारों की स्पीड तो बहुत तेज़ होती है और अशुद्ध की तो एकदम तेज होती है। जब गुस्सा आएगा तो इतनी बातें बोल देंगे, क्या क्या बोल देंगे, आगे पीछे सब कुछ वो अंदर का पूरा किचरा निकाल देंगे, उल्टी कर देंगे जब गुस्सा आता है तो। लेकिन जब मन शांत है तो बस थोड़े से शब्द निकलेंगे। तो पर बाबा कहते वो अंदर में भरते ही क्यों हो, अंदर में वो भरते ही क्यों हो जो निकल आता है, ज़रूरत ही क्या है। एक कान से सुनो, दूसरे कान से अगर आप सुना भी एक कान से तो निकाल दो, इसमें क्या है। तभी बाबा कहते सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता है, उस समय सहन शक्ति का आह्वान करो, सहन शक्ति आ जाओ। हाँ बाबा कहते आ जाओ, समाने की शक्ति आ जाओ, और उस समय वो शक्ति आपके अंदर आ जाए। और जैसे वो शक्ति का आह्वान किया, वो शक्ति आपके अंदर आ गई, मन शांत हो गया। तो आह्वान करो, और आह्वान ये तब होगा जब हमारी लाइन क्लियर होगी, बुद्धि की लाइन क्लियर एक बाबा के साथ जुटी हुई होगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं एक सेकंड में न्यारे हो जाओ, एक सेकंड में न्यारा, ये बहुत एक कला है। इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं, एक घर घंटे घंटे शांति का गीत बजता है, ताकि उस समय हम अपने मन की ट्रैफिक को एक सेकंड के अंदर रोक दें। और ये प्रैक्टिस जैसे ही होगी, अंतर में जाते रहेंगे, अंतर्मुखी बनते रहेंगे, तो अंदर में भरपूर होंगे, नहीं तो अंतर में खाली होंगे। वैसे तो कहावत है, अगर शांति चाहिए तो अंदर में जाओ, खुशी चाहिए अंदर में देखो, प्रेम चाहिए आपके अंदर में देखो, अंदर में, बाहर कुछ नहीं है, सब अंदर है। सब अंदर है तो किसके अंदर है, आत्मा के अंदर है, शरीर के अंदर नहीं है। शरीर का तो रक्त पस और हड्डी मांस बस यही है, अंतड़ियां हाँ ये सब है, क्या क्या निकलता है शरीर, थोड़ा ही अगर चाकू लगता है तो कैसे खून निकल आता है, पस निकल आता है, शरीर तो यही है ना, हार्ड मांस का पिंजरा है। लेकिन शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, शक्ति, ये मनोबल, ये आत्मा की चीज़ है। इसीलिए बाबा हमको जोर दे रहे हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, मैं शिव बाबा का हूँ, बच्चा हूँ, ये समझो। भक्ति मार्ग में तो बस कह दिया परमात्मा सर्वव्यापी है, आत्मा उसका अंश है। आज मम्मा ने बताया ना, अंश का मतलब क्या है, उसका टुकड़ा तो नहीं है ना। अंश का मतलब है कि जो शिव बाबा में गुण है वो आत्मा के अंदर भी वो गुण है। शरीर के अंदर वो गुण नहीं है जो परमात्मा में गुण है, वो आत्मा में है, अंश में तो है ना। शरीर में कौन से गुण है, प्रकृति के गुण है। जो प्रकृति के गुण है वो शरीर के अंदर है। 80% पानी है, हवा है, आकाश है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्वों से ये शरीर बना है। तो ये 5 तत्व है ये शरीर के अंदर। लेकिन शांति, प्रेम, आनंद वो तो शरीर की चीज़ नहीं है। इसलिए अगर वो चाहिए तो आत्मिक स्थिति ज़रूरी है। इसीलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने के बाद फिर बाबा कहते विदेही अवस्था लाओ। और विदेही अवस्था जब बाबा कहते, वो किसकी यादगार है विदेही अवस्था, राजा जनक की अवस्था। राजा जनक के लिए कहते वो विदेह राजा थे, अर्थात इतने बड़े महल में रहते थे तो भी उसको महलों का मोह नहीं था। तो राजा जनक की तरह रहो, किसी भी बात में मोह न हो, प्रेम सबसे हो। क्यों सबसे प्रेम होना जरूरी है, क्योंकि भगवान से प्रेम है। तो भगवान से प्रेम है तो सबसे प्रेम है। बीज से प्रेम है माना सारे झाड़ से प्रेम है, लेकिन एक एक पत्ते से प्रेम करने नहीं जाते हैं। बीज को पानी दिया, हर पत्ते को मिल गया, बस। एक एक को प्रेम करने जाओ तब बीज से प्रेम होगा, नहीं। बट बीज से प्रेम हो, सारी दुनिया से प्रेम है, किसी से भी नफरत नहीं है। कोई भी हो, कोई भी गैर नहीं है, किसी से भी वैर नहीं है, बस। जब अंदर में ये भावना हो ना, तब समझो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति है। और अगर वो बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं आती है तो बाबा कहते ये जीवन सफल नहीं हुआ। तो तन को भी सफल करना है, एक एक संकल्प को भी सफल करना है, तभी तो वो वृत्ति बनेगी। क्योंकि संकल्पों से वृत्ति बनती है, व्रत बनते हैं। जैसे पत्थर डाला पानी में तो वो गोल 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 व्रत बनते जाते हैं और वो फैलते जाते हैं। और वही वृत्ति से वायुमंडल जो बनता है, उसी वायुमंडल से सारे विश्व में परिवर्तन आएगा। पर उसके लिए मुझे बदलना है। बाबा इसी पर बहुत जोर देते हैं। हम चाहते दूसरा बदले, ये भी एक मांगनी मांग है, वो बदले। ये भी तो भीख मांगना हुआ ना, भाई तुम बदल जाओ। वो कहेगा मैं नहीं बदलूँगा। अच्छा, तुम नहीं बदलोगे तो मैं बदल जाता हूँ। ये नहीं, तुम नहीं बदलते हो तो देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ, तुम नहीं बदलते हो, बदल नहीं, अभी बदल जाओ नहीं तो मार डालूँगा। नहीं, मार डालूँगा तो क्या तुम बचोगे क्या, तुम मार डालोगे तो। इसीलिए बाबा कहते हैं किसी को बदलने का लक्ष्य मत रखो, पर खुद बदल जाओ। न बदला लो, न किसी को बदलने का की उम्मीद रखो। क्योंकि हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना अपना जो पार्ट वो बजा रहा है, वो उसी ड्रामा के अंदर नूंद है, वो भी बेबस है। ड्रामा में उसका वही पार्ट है। अब रावण को पार्ट मिला रावण जैसा पार्ट बजाने का, पर सचमुच तो वो रावण जैसा था नहीं। अरविंद त्रिवेदी बताते जिसने रामायण में रावण का रोल किया, वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, शिव का भक्त था, बहुत अच्छे उसके संस्कार थे, सबको सुख देता था। लेकिन उसको रोल मिला रावण का, तो वो रोल तो उसने बहुखूबी बजाया, तो उसको तो हाँ शाबाश मिली कि तुमने इतना अच्छा रोल बजाया। लेकिन प्रैक्टिकल में तो वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। इसीलिए बाबा कहते हैं उस व्यक्ति को हम बदलने की कोशिश करेंगे, परिणाम क्या होगा, न वो बदलेगा न हम बदलेंगे, और परिणाम उसका और उल्टा हो जाएगा, जो हमारा भी पाप बनता रहेगा उसका भी पाप बनता रहेगा। कम से कम उसका पाप न बने तो उसके लिए मुझे बदलना पड़ेगा। कई बार होता है ना, कोई व्यक्ति से अब कुछ ऐसा कुछ करते तो उसको गुस्सा आता है, उसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है हम नहीं करेंगे, इसमें क्या है, ये थोड़ी कि ज़बरदस्ती मुझे उसको गुस्सा दिलाना है, नहीं करेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा, तो हम बदल गए ना। अगर हम नहीं बदलेंगे और यही कोशिश करेंगे वो बदले, माना हम भिखारी बन गए, उनसे मांग रहे हैं प्लीज़ बदल जाओ, मेहरबानी करके बदल जाओ, वो कहेगा नहीं बदलता हूँ। तो फिर दो बांस की लकड़ी होती है ना, वो कैसे आपस में टकराती और आग लगती है। अभी भी जो दुनिया में चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, ये सब ईगो अभिमान का युद्ध है। वो कहेगा मैं भी शक्तिशाली हूँ, दूसरा कहेगा मैं भी शक्तिशाली हूँ, और दोनों समझते हम शक्तिशाली और तबाही करते जाते हैं, नुकसान करते जाते हैं, दुनिया को नष्ट करते जा रहे हैं। लेकिन फिर बाबा कहते उनका भी दोष नहीं है। उनका दोष क्यों नहीं है, क्योंकि उनका भी वही पार्ट है, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा दुनिया की सफाई, कौन करेगा, हाँ वही तो करेंगे, हम तो स्थापना करने वाले ना, हम तो विनाश करने वाले नहीं हैं। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा, हाँ उस दिन कोई कह रहा था बहन जी वो लड़ेंगे ना मक्खन हमें मिल जाएगा, हाँ मक्खन हम खा लेंगे, वो लड़ करके ख़त्म हो जाएंगे। तो पांडव तो नहीं लड़ते हैं, कौरव भी आपस में लड़ते हैं, यादव भी आपस में लड़ते हैं, पांडवों को तो कि तो आखिर विजयी होनी है क्योंकि भगवान उनके साथ है। कौरवों के साथ तो भगवान नहीं है ना, न कौरवों के साथ है न यादवों के साथ है। तो पांडवों के लिए तो यही कहते हैं कि उनकी तो प्रीत बुद्धि थी भगवान से, तो प्रीत बुद्धि जिनकी है उनका उनकी तो विजय है ही है, भगवान के आज्ञाकारी थे। अर्जुन को भी भगवान ने यही कहा ना, तुम युद्ध करो मैं नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा केवल रथ खींचूंगा, बस कर्म तुझे करना है। लेकिन इतनी बड़ी गीता क्यों बन गई, इतनी बड़ी गीता इसीलिए बन गई क्योंकि अर्जुन नष्टो मोहा नहीं था। इसीलिए अर्जुन को नष्टो मोहा बनाने के लिए ये 18 अध्याय जो गीता के हैं वो चले। कैसे नष्टो मोहा बनाया भगवान ने उनको, सबसे पहला जो उनको ज्ञान दिया वो आत्मा का ज्ञान दिया। इसीलिए दूसरे अध्याय में केवल आत्मा का ज्ञान है। नष्टो मोहा होने के लिए आत्मा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दुख होगा। पता है आत्मा मरती नहीं है, इसीलिए भगवान ने उनको कहा तुम इनको आत्मा देखो, शरीर मत देखो, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, इसीलिए दुखी मत हो जाओ। तो पहला ज्ञान आत्मा का दिया नष्टो मोहा होने के लिए, बेहद की वैराग्य वृत्ति लाने के लिए आत्मा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। पर फिर भी अर्जुन का मोह नष्ट नहीं हुआ, फिर दूसरा ज्ञान उनको कौन सा दिया, अपना स्वमान याद दिलाया कि हे अर्जुन तुम कौन हो, पता है तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय की विशेषता क्या होती है? क्षत्रिय के मुख से जो निकलता है वो सत्वचन हो जाता है, वो मरेंगे और मारेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। क्षत्रिय ये होते हैं, जो मुख से निकला उसको जरूर निभाएंगे। इसीलिए तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना ही है, कायर बन के लौटना नहीं है। पहले जमाने में जो योद्धे होते थे उनकी पत्नी उनको विजय का तिलक लगा करके युद्ध के मैदान में भेजती थी और यही कहती थी, हार खा के नहीं आना। हाँ, या तो युद्ध के मैदान में शहीद हो जाना या तो जीत करके आना, पर हार खा के नहीं आना, ये विशेषता थी। तो तुम क्षत्रिय हो, तो इसलिए बाबा हमें कितने स्वमान देते हैं, याद करो अपने स्वमानों को, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। दादी जानकी का यही नशा रहता था, 3 बार ओम शांति कह करके यही कहते थे। तो क्षत्रिय हो, पर अर्जुन फिर भी नहीं समझ रहा था क्योंकि मोह के वश था। फिर तीसरी युक्ति भगवान ने क्या रची, उसको ये ज्ञान दिया कि हे अर्जुन, इस युद्ध में अगर तुम जीतोगे तो तुमको स्वर्ग का अधिकार मिलेगा, अगर तुम हार भी जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे। उसको टेम्पटेशन दिया, प्रलोभन दिया, ये युद्ध ऐसा है जिससे तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु उसने क्या कहा, मुझे स्वर्ग वर्ग नहीं चाहिए, हाँ मैं इनको मार नहीं सकता, मोह के वश था। तो स्वर्ग को भी उसने ठुकरा दिया कि ये सब हमको नहीं चाहिए। तो ये भी तीसरा उनका ऑप्शन था, वो भी नहीं उसको पसंद था। फिर भगवान ने उनको एकदम से शमशान दिखा दिया कि इनकी मौत तो निश्चित है, ये सब मरे हुए पड़े हैं, निश्चित समझो। आइए ओम शांति, हमारे बीच हाँ बड़े मेहमान आए हैं, ओम शांति। बहुत
शांति।